आस्था ने आगे कहा, सब लोग आपसे डरते हैं, हम भी आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन हम क्या करें, अब हम सांस भी आपकी मर्जी से ले क्या। तब आस्था की बात सुनकर अरमान ने अचानक आस्था का जबड़ा पकड़ लिया और बोला, हाँ तुम्हारी ये सांस भी तो मेरी मर्जी से हिलोगी, समझी तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया के सामने बोलने की। अरमान ने एक बार फिर अहंकारी स्वर में आस्था को डांटा। तब आस्था लाल पड़े चेहरे के साथ बोली, आखिरकार आप चाहते क्या हैं, एक बार निर्णय क्यों नहीं ले लेते हैं। पहले तो आप बोल रहे थे कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, और अब हमने आपसे बोलना शुरू किया तो अब आप कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बोलने की। आप इतने उलझन में क्यों हैं। अब जैसे ही आस्था ने सवाल किया, एक पल को तो अरमान की भी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आस्था की मासूम टिमटिमाती हुई आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे न जाने और भी क्या क्या कहना चाहती थी। तब आस्था ने एक बार फिर कहा, हमने कहा ना, हमने कोई गलती नहीं की है, गलत हमारे साथ हुआ है जो हमें आप जैसे इंसान की जिंदगी में लाया गया है, और इसके लिए हम अपने कान्हा जी से कभी भी बात नहीं करेंगे, हम अपने कान्हा जी से बहुत नाराज हैं। आस्था की इस तरह की बेतुकी बातें सुनकर अरमान हैरानी से उसे देख रहा था, और फिर अचानक गंभीरता से अरमान बोला, क्या चाहती हो तुम, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। तब आस्था ने अपनी मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तब अरमान बोला, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनने की इजाज़त दूंगा, लेकिन अगर तुम बाहर जाकर अपनी हद पार नहीं करोगी तो। आस्था को अरमान के बातों का मतलब समझ नहीं आया था कि वो किस हद को पार करने के लिए कह रहा है। फिर आस्था मासूमियत से बोली, हद पार नहीं करूंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डॉक्टर ही तो बनेंगे, हम बाहर डॉक्टर बनने के लिए जाना चाहते हैं, हद पार करने के लिए नहीं। अरमान समझ चुका था कि आस्था को उसकी बातों का मतलब समझ में नहीं आया था, और वो मन ही मन में झल्लाया कि ये आफत वाकई इतनी मासूम है या सिर्फ मासूम बनने का दिखावा करती है, लेकिन क्यों इसकी मासूमियत पर यकीन करने का दिल करता है। कहीं ना कहीं अरमान ये सब सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल एकदम ठंडे स्वर में बोला, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे आसपास कोई लड़का नहीं होगा और ना ही कोई लड़की होगी, तुम किसी से कोई भी बात नहीं करोगी, समझी। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो सिविल ड्रेस में मेरे गार्ड तुम्हारे आसपास रहेंगे जो तुम्हारे साथ जाएंगे। अरमान जैसे जैसे आस्था को इतनी सारी शर्तें बता रहा था, आस्था की आंखें हैरानी से फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था वो डॉक्टर बनने नहीं बल्कि वो किसी दूसरी कैद में जा रही हो। वहां पर भी अरमान के बॉडीगार्ड उसके आसपास रहने वाले थे और उसे किसी से भी बातें करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिलहाल आस्था के लिए इतना ही बहुत था कि अरमान ने उसे डॉक्टर बनने की इजाज़त दी थी। तब उसके आगे अरमान शांत स्वर में बोला, आज ऑलरेडी एक दिन कंप्लीट हो चुका है, कल से तुम कॉलेज जा सकती हो और अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो, और फिर वहां से डायरेक्ट तुम्हें मेंशन आना होगा। याद रखना, 24 घंटे मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी, और अगर मुझे इस बात का शक हुआ कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है, तुमने किसी से बातें करने की कोशिश की है, तो याद रखना, अरमान सिंघानिया का डेविल रूप देखने के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही वहां से जाने लगा, लेकिन आस्था ने पीछे से अरमान को रोका और बोली, सुनिए। और उसने बड़ी ही प्यारी सी आवाज में कहा था, सुनिए। ये आवाज सुनकर अपने आप ही अरमान के कदम रुक गए थे। अब आस्था के मन में एक उम्मीद फिर जगी थी और धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आया, और अरमान ने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने की इजाज़त दी थी तो उसके लिए उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं थी। आस्था तुरंत अरमान के सामने गई और उसने उसे बिना सोचे समझे जोरों से गले लगा लिया। अब आस्था ने जैसे ही अरमान को ऐसे गले लगाया, एक पल को अरमान पूरी तरह से स्तब्ध हो चुका था। वो सोच रहा था, थोड़ी देर पहले ये लड़की मुझे देखकर कांप रही थी, डर रही थी, मेरे सामने बोल नहीं रही थी, और अचानक से इसे क्या हुआ जो उसने मुझे आकर गले लगा लिया। और तब आस्था खुशी से अरमान को गले लगाते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखिएगा अब हम बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और हम ये खुशखबरी अभी सबको सुनाकर आते हैं और जल्दी से नानी माँ को भी फोन कर देते हैं। आस्था जल्दी से अपने कमरे से निकलकर अरमान को ये सब बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अरमान इस तरह से स्तब्ध हुआ था, उसे 440 वोल्ट का करंट लगा था, ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर का रोमांच खड़ा हो गया हो। अरमान ने तुरंत खुद को नियंत्रित किया और सोचने लगा कि इस आफत के इतना करीब आने से मुझे क्या हुआ, उससे पहले भी तो मैं उसके कितने करीब गया हूँ, लेकिन इस तरह की अनुभूति तो कभी भी नहीं आई। और क्या है ये आफत, एक पल में डरती है, एक पल में घबराती है, एक पल में चुप हो जाती है, एक पल में बोलने लगती है, और खुद से ही आकर चिपक भी जाती है। क्या है ये लड़की, कहीं ये मुझे पागल ना कर दे, ये सोचते हुए अरमान वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं आस्था की चिंता में सभी हॉल में जमा थे, और सभी के सभी आस्था की बीमारी को लेकर परेशान थे, क्योंकि जब से डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आस्था को उसकी मनपसंद चीज नहीं दी गई तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, तब से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं ध्रुव तो आहान से निराश होकर कह रहा था, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, हमने बेकार में भाभी को यहाँ लाकर उनकी जान खतरे में डाल दी, काश हम ऐसे उन्हें मिलाने की कोशिश ही ना करते।
अब दोनों कहीं ना कहीं अपने किए पर शर्मिंदा थे। वहीं आकाश और सुमित भी आस्था की हालत को लेकर परेशान थे। डॉक्टर रश्मि दादाजी के पास बैठी थी, उनका हाथ थामकर दिलासा देते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी सब लोगों को एक आवाज सुनाई दी, दादाजी, ध्रुव जी, आहान जी, सुमित भैया, आकाश भैया, रश्मि दीदी। ऐसा बोलकर आस्था तेजी से दौड़ती हुई सीढ़ियों पर से आ रही थी। हालांकि उसमें अभी काफी ज्यादा कमजोरी थी, क्योंकि वो एक मुट्ठी भर की थी। आस्था जरा सी देर में उसकी हालत खराब हो जाया करती थी और उसे सीढ़ियों से दौड़ते हुए देखकर सभी हैरानी से खड़े हुए थे। आराम से बेटा, आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आस्था तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए बस जल्दी से दौड़कर वो सबको ये खुशखबरी देना चाहती थी। अब आस्था जो कि तेजी से भागते हुए आ रही थी, तो थोड़ा सा उसका सर चकराने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, मारिया तुरंत उसके पास आई और उसने उसे संभाल लिया था। कुछ पल के लिए आस्था ने अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन अगले ही पल वो सीधी खड़ी हुई थी और मारिया को हैरानी से देखने लगी थी। एक पल को तो आस्था मारिया को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर आस्था दादाजी से गले मिलकर और फिर डॉक्टर रश्मि से मिलकर बोली, आपको पता है दादाजी, मिस्टर राक्षस ने हमें कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी है। अब हम कल से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अब जैसे ही आस्था ने मुस्कुराकर और गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेते हुए जल्दी जल्दी ये सारी बातें बोली, सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर सदमे में देखने लगे थे। और आकाश और सुमित तो वाकई शॉक थे, क्योंकि अरमान जो एक बार फैसला ले लेता था उसे बदलता नहीं था, लेकिन आजकल तो वो अपना फैसला भी बदलने लगा था, तो ये बात उन्हें थोड़ी सी अजीब लगी थी। वहीं अरमान आस्था के पीछे पीछे ही हॉल में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। लेकिन वाकई सबको आस्था के लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो आस्था कम से कम अब अपना सपना तो पूरा कर पाएगी और कॉलेज तो जा पाएगी, जिसके लिए उसकी तबीयत इस तरह से खराब हो गई थी। तो कहीं न कहीं वो लोग आस्था के लिए खुश थे।
तब दादाजी ने एक नज़र घुमाकर अरमान की ओर देखा, जो कि बेपरवाह सा सोफे पर बैठा हुआ था, मानो कि उसे उन सबकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। लेकिन उसका पूरा ध्यान उस वक्त आस्था की एक्टिविटी पर था, कि आस्था किस तरह से चहक रही थी और आस्था को खुश देखकर किस तरह से सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। एक पल को तो अरमान सोचने लगा कि इस लड़की के आते ही सब लोग बदल रहे हैं, धीरे धीरे ये लड़की सबको अपने कब्जे में कर रही है। तभी ध्रुव और आहान दोनों ही जाकर आस्था को साइड हक करने लगे और मुस्कुराकर बोले, वाह भाभी, कंग्रेचुलेशंस, बस आप ऐसे ही खुश रहिए, पता है जब आप उदास होती हैं हमें भी अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे ही ध्रुव और आहान ने आस्था से ये कहा और आस्था को हक किया, तो अब अरमान की आंखें एकदम से ही सर्द हो गई थीं और वो गहरी नज़रों से ध्रुव और आहान की ओर देखने लगा था। अनायास ही ध्रुव की निगाह जैसे ही अरमान पर पड़ी, वो तुरंत दो कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया था। वहीं आस्था ने भी जैसे ही ध्रुव की नज़रों का पीछा किया और उसकी नज़रें भी अरमान से टकराईं, तो वो थोड़ा सा असहज हो गई थी और वो खुद आहान से अपना हाथ छुड़ा लिया था, क्योंकि अभी भी उसके कानों में अरमान की बात गूंज रही थी कि तुम्हें किसी भी लड़के के आसपास नहीं रहना है। फिलहाल आस्था के लिए तो बस यही जरूरी था कि उसको कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई थी। तभी दादाजी एक्साइटेड होकर बोले, लेकिन बेटा, आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? तुमने अरमान को कैसे मनाया? अब जैसे ही दादाजी ने ये सवाल किया, आस्था जो चटर पटर बोलने की आदत थी, वो खुश होकर तुरंत बोल पड़ी, दादाजी, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस इतना बोला कि जैसे आप कहेंगे हम वही करेंगे, बस हमें कॉलेज जाने दीजिए। तब मिस्टर सिंघानिया ने हमें बोला कि बस हमें उनकी कुछ बातें माननी होंगी, उसके बाद वो हमें कॉलेज जाने देंगे। जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी हैरानी से आस्था की ओर देखकर बोले, फिर ऐसा क्या कहा अरमान ने? वहीं अरमान अपने सर पर टेप करने लगा था और सोचने लगा कि जो बातें उसने आस्था को बंद कमरे में बोली हैं, कहीं वो बातें यहाँ सबके सामने ना कह दे। लेकिन आस्था तो आस्था थी, वो तुरंत बोल पड़ी थी, उन्होंने बस इतना बोला है कि हमें वहाँ पर कॉलेज जाकर किसी से बात नहीं करनी है और लड़कों से दूरी बनाकर रखनी है, किसी से बात नहीं करनी है, साथ ही साथ किसी लड़कियों से भी बात नहीं करनी है। अब जैसे ही आस्था ने अपनी मासूमियत से जल्दी से दादाजी को सारा सच बताया, दादाजी घूरकर अरमान को देखने लगे थे। वहीं रश्मि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उसे बहुत हंसी आ रही थी, उस वक्त वो बहुत ज्यादा हंसना चाहती थी। ध्रुव और आहान भी बगले झांकने लगे थे, वो इधर उधर देखने लगे थे और बाकी सब शौक होकर अरमान को देख रहे थे। तब सब लोगों को अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ देखकर अरमान वहां आ गया और ऑर्डर देते हुए बोला, सबके सब जाओ अपने कमरे में आराम करो, और तुम तो बीमार थी ना, इतनी जल्दी तुम में इतनी ताकत भी आ गई, तुमने इतना ज्यादा बोलना भी शुरू कर दिया, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। तभी आस्था कुछ सोचते हुए जाती हुई रुकी और बोली, लेकिन हमें अपनी नानी माँ से भी बातें करनी थी। नानी माँ जैसे ये सुनेंगी कि हम कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। तभी रश्मि बोली, आस्था तुम उसकी फिक्र मत करो, नानी माँ से मैं खुद पर्सनली मिलने जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम ठीक हो और तुम अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर रही हो। अब रश्मि ने जैसे ही ये कहा, आस्था ने आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा किया था और जल्दी वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। वहीं अरमान, जिसके लिए अब बाहर रुकना मुश्किल हो गया था, वो सीधा अपने स्टडी रूम में जाकर अपना आगे का काम जारी करने लगा था। थोड़ी देर बाद टाइगर और मारिया भी वहां आ गए थे और सीधा स्टडी रूम में अरमान के आजू बाजू खड़े हो गए थे। वहीं दादाजी कुछ गहरी सोच में पड़ गए थे। वेल, डॉक्टर रश्मि दादाजी से विदा लेकर जल्दी ही वहां से नानी माँ यानी कि आस्था के घर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन मौसम बुरी तरह से बदल चुका था और बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। वहीं आस्था, जो कि इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी, उसके कानों में भी बारिश की आवाज सुनाई दी थी। आस्था की सबसे बड़ी कमजोरी थी बारिश में नहाना, डांस करना उसे बेहद पसंद था। अपने गांव में जब भी बारिश होती थी, गांव के घर की छत पर चढ़कर वो ढेर सारी मस्ती किया करती थी। अब जैसे ही बारिश हुई, और इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया की बालकनी में बारिश पड़ी तो आस्था तो खुद को रोक नहीं पाई और बालकनी का दरवाजा खोलकर वो सीधा बारिश में भीगने लगी थी और खुशी से गोल गोल घूमने लगी थी, क्योंकि आज उसे काफी बड़ी खुशी मिली थी। एक पल को तो आस्था ने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब जब से उसे ये पता चला था कि वो अपना सपना पूरा कर पाई थी, तब से वो बहुत खुश थी और बारिश में गोल गोल घूमने लगी थी। वहीं अरमान, अबीर सिंह राठौर की पूरी जानकारी लेने के बाद टाइगर और मारिया को कुछ जरूरी काम सौंपकर अपने कमरे में जाने लगा था। जैसे ही वो कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेडरूम में नहीं थी। अरमान की भौहें तन गई थी कि आखिरकार ये लड़की कहाँ जा सकती है। जब मैंने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेजा था तो उसे कमरे में आराम करना चाहिए था, तो इस तरह से वो कहाँ जा सकती है। लेकिन जल्दी ही अरमान के कानों में आस्था के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। अब अरमान उस दिशा में आगे बढ़ने लगा था और जैसे उसने बालकनी से बाहर का नजारा देखा तो वो अपनी पलकें झपकने भूल गया था। आस्था बड़ा ही खूबसूरत सा डांस कर रही थी और खुद अपने मुंह से गुनगुना रही थी, मेरे प्यारे दोस्तों बस फटाफट से कमेंट करो, मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन दो।